चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ इंशाल्लाह ताला। मक्का की गलियों में चलकर देखें और उसमें आज देखते हैं कि हम क्या सीखते हैं।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
ये बात सच है, हकीकत यही है। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं। मगर सच है ये भी, कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, मक्का की गलियों में चलकर देखें। दारुल अरकम में ये मजलिस, जो इस जमीन पर सबसे बेहतरीन मजलिस थी, अब बर्खास्त हो गई थी। मेरे नबी के सहाबा एक एक करके छुपते छुपाते आहिस्ता आहिस्ता यहां से निकल रहे थे। मेरे नबी भी खामोशी से दरवाजे से निकले और हरमे काबा की तरफ चल दिए। मैं भी आपके पीछे पीछे हो ली। आपने वहां जाके 2 रकत नमाज अदा की और काबा के साए में टेक लगाकर बैठ गए। काबा के गिर्द बुतों की नहुसत माहौल को बड़ा खराब बना रही थी। मुझे कभी भी ये अच्छा नहीं लगता था। लोग आ रहे थे अपने अपने बुतों के आगे, सर झुका रहे थे, चढ़ावे चढ़ा रहे थे और फिर तवाफ शुरू कर देते थे। इतने में मैंने एक तरफ से एक सख्त परेशान हाल गुलाम को आते देखा। उनकी हालत गैर थी, जगह जगह सलाखों से जलाए जाने के निशान थे और यूं लगता था किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से इनको मारा हो। वो आते ही मेरे नबी के आगे आकर गिर गए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? आप दुआ नहीं करते क्या? मेरे नबी बेचैन हो गए। आप ने टेक लगाई भी थी लेकिन आप आगे को होके बैठ गए और फरमाया, खब्बाब, तुम अभी से घबरा गए? क्या तुम्हें नहीं पता तुमसे पहले लोगों को कितना ज्यादा सताया गया? उनको दीन की खातिर आहारों से चीर दिया गया, उनके जिस्मों में लोहे की कंघियां चलाई गई। मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, मैं तड़प गई। मुझसे सुना नहीं जा रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, फिर भी उन लोगों ने अपने दीन को नहीं छोड़ा। मैं सोच रही थी वो लोग कैसे होते होंगे, वो किस मिट्टी के बने हुए थे। मैं खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु की हालत देख के बहुत गमगीन हुई। कोई भी उनको देखता तो तर्स खा लेता, मगर यहां पे किसी को रहम नहीं आता था। और फिर इनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि ये एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। एक अल्लाह को मानना इस मुआशरे में इतना बड़ा जुर्म था इसकी वजह से इंसान की जिंदगी अजीरन कर दी जाए। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करने लगी कि मेरे जमाने में तो मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होती अपने इस दीन को अपनाने में। मुझे कितनी आजादी मिली भी है, पर इसके बावजूद मेरा ईमान कितना कमजोर है। और इनके ईमान बावजूद इस कदर सख्त हालात के चट्टानों की तरह मजबूत है। मैं सोच में पड़ गई, इनके हालात कब सही होंगे, आखिर कब? 10 साल से तो यही हो रहा है, और एक एक दिन 10 साल में सदियों के बराबर गुजरा है। मुश्किल वक्त तो वैसे भी लंबा हो जाता है। मुझे ये सब देख के ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं यहां होती तो शायद मैं इतना सब्र ना कर पाती। इनको रब्बे ताला ने वाकई अपने नबी के लिए खास तौर पे चुना और उनका साथी बनाया। ये इसका हक रखते थे, वाकई ये इस काबिल थे। मैं इस काबिल नहीं थी, इसीलिए मैं इस जमाने में पैदा नहीं हुई। मेरे नबी यहां से उठे और अपने साथियों के पास चल दिए। आज यहां पर इनकी मजलिस में एक अजीब सा वाक्या पेश आया। कहीं से कुछ खाना आया था, वो खाना मेरे नबी के सामने जब रखा गया तो आपने अपने साथियों से फरमाया, ये लोग खाने की तस्बीह सुनो। अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नबी के साथ ही बैठे हुए थे, बाकी सहाबा भी आगे बढ़े और वो भी, और सब ने खाने की एक तस्बीह सुनी जो एक बिनमिनाहट की सूरत में थी। मैं सुबहान अल्लाह कहे बगैर ना रह सकी। ये वाकई मेरे नबी का मोजज़ा था कि हमें खाने की तस्बीह सुनाई दे रही थी। वैसे तो हमारा ईमान है कि हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह करती है, मगर कभी सुना नहीं था। मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई। किसी चीज का मालूम होना अलग बात होती है, मगर आज जब अपने कानों से तस्बीह सुनी बहुत अच्छा लगा। ईमान बढ़ गया, खाना भी अल्लाह की तस्बीह करता है। और सद अफसोस कि कई खाना खाने वाले उस रब की तस्बीह से बेनियाज रहते हैं, उनको बिस्मिल्लाह कहना भी याद नहीं रहता। ऐसे खाने वालों से तो ये खाना ही बेहतर है जो तस्बीह में लगा हुआ है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुसअब बिन उमैर अंदर दाखिल हुए। इनकी ये क्या हालत हो गई थी, ये तो मक्का के सबसे हसीन और खुश लिबास और नेमतों में पले हुए नौजवान थे। बेहतरीन खुशबू लगाने वाले, हजरमी जूता पहनने वाले, आज इनकी हालत कैसी थी? जिस्म पर एक खाल का टुकड़ा था सिर्फ, जिसमें भी पैबंद लगे हुए थे। जब से हबशा से वापस आए थे, ना वो रंग रूप बाकी रहा था, ना ही वो नेमतों का असर था इन पे। मुसीबतों में इन्होंने तो अपनी हालत ही बुरी कर ली थी कि इतना गहरा असर हुआ था इन हालात का उन पे। कहां वो शानो शौकत रखने वाले, वो सब जो शहजादों की तरह मक्का की गलियों में घूमा करते थे, और कहां ये फकीर जो सख्त कमजोर नातवां और यूं लगता है फाकों में पलने वाले हैं। इनका ये कैसा हाल हो चुका है, इतने लाडले शहजादे को लगता है कि हालातें मुरझा के रखती है। मेरे नबी के साथियों ने जब ये देखा, सबने गर्दनें झुका दी, इसलिए कि वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरे नबी ने एक नजर उठा के इन पे डाली और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियादारों को उनकी दुनिया नसीब हो, मैंने मुसब को ऐसे हाल में देखा है कि मक्का में इनसे बढ़कर साहिबे सरवत और दौलतमंद कोई नहीं था। ये माँ बाप के अजीज तरीन थे, मगर अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत ने आज इनको इस हाल तक पहुंचा दिया कि इसने हर चीज को अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर छोड़ दिया। मैंने सोचा कितना हौसला है इनका, ये आसान नहीं। एक बार जिसने ऐशो इशरत का मजा चख लिया हो, उसके लिए फकीरी की सतह पे जीना बहुत मुश्किल है। ऐसी महरूमी की जिंदगी गुजारना आसान नहीं था, मगर मुसब तो जैसे इन सब चीजों से बेनियाज हो गए थे। उनको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, सब कुछ छोड़ चुके थे और खुद अपने हाथों से छोड़ा था। उनको ये सब कुछ प्यारा होता तो कभी इन चीजों को छोड़ना गवारा ना करते, मगर उन्होंने अल्लाह ताला से सौदा कर लिया था। दुनिया का सारा ऐशो आराम अल्लाह की खातिर देकर अल्लाह और उसके रसूल को अपने लिए काफी समझ लिया था। वो खामोशी से आए और इत्मीनान से आके मेरे नबी के पास बैठ गए। ना उनमें कोई बड़ाई नजर आई, ना कोई नेकी का जूम, ना कोई तकब्बुर, ना इस कुर्बानी को देने के बाद एक नखुवत। चेहरे पे आजजी थी, सर झुका हुआ था और यूं लगता था जो इनका सारी की एक तस्वीर है। मैं सोच रही थी ये कैसे लोग हैं, इतने बड़े बड़े काम करके भी इतनी आजजी, कोई नखरा नहीं, कोई फखर नहीं, कोई गरूर नहीं, कैसे आ गई इनमें इतनी आजजी। मुझे याद है मेरे जमाने में तो जरा जरा से काम करके मैं और मेरी साथी हम चाहा करते थे कि हमें कोई नोटिस करे, कोई तारीफ करे, कोई कमेंट करे, कोई इनाम तो दिया जाए। इनाम ना सही तो हमारे नाम का ऐलान तो किया जाए, और कुछ नहीं तो एक शाबाशी की थपकी तो जरूरी होनी चाहिए। और अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक खास किस्म की बड़ाई का एहसास भी आ जाता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम खुद को कुछ ज्यादा ही नेक समझने लगते थे, दूसरों से बेहतर जानने लगते थे, दूसरों से ज्यादा खुद को पाकीज़ा समझने लगते थे। हालांकि मेरे और मेरे साथियों के काम तो इनके मुकाबले में इतने छोटे और इस कदर हकीर थे, मगर वो ही हमारे लिए कितने बड़े बड़े कारनामे हुआ करते थे। इन लोगों को देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया था, मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आती। और मैंने अपने आप को क्या समझा हुआ था, मेरी सारी खुशफहमियां दूर हो गई थी और इनके आगे मुझे अपना आप इतना हकीर महसूस हो रहा था। मैं सोच रही थी, या अल्लाह, कयामत के दिन क्या होगा, क्या दिखाऊंगी तुझे। जबकि इन जैसे बेशुमार लोग मौजूद होंगे। उस वक्त मैं कैसे जुर्रत करूंगी अपने आमाल नामे को खोलने की भी, वो आमाल नामा जिस पर कल तक मैं बड़ी मुतमईन थी कि बड़े बड़े कारनामे कर चुकी हूं। आज अचानक से वो सारे कारनामे मुझे हकीर से नजर आने लगे। मुझे ऐसे लग रहा था मैंने तो कभी कोई नेकी की ही नहीं। मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वहां मैं क्या इस निकम्मे से आमालनामे के साथ जाऊंगी? क्या इसके साथ मैं पार हो सकूंगी? मेरी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसुओं के कतरे टपक टपक के मेरे चेहरे को भिगोने लगे। मैं तो जन्नतुल फिरदौस में जाने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन आज तो मुझे अपनी निजात का ही डर हो गया कि निजात भी हो पाएगी या नहीं। वाकई जब तक मैंने इन नादार मुसलमानों को नहीं देखा था तो वाकई मैं अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठी थी, मगर आज मेरी आंखें खुल गई थी। मुझे तो वापस अपने जमाने में जाके बहुत कुछ करना है, वरना मैं इन्हीं खुशफहमियों में रही तो धोखे में रहूंगी। मुझे उठना होगा, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, अपने दीन की खातिर अपना आराम छोड़ना होगा, अपने तायुशात छोड़ने होंगे, अपना माल लगाना होगा, अपनी जान लगानी होगी, मेहनत करनी होगी, क्योंकि बाजी ले जाने वाले तो बाजी ले जा चुके, और मैं कुछ ना करके भी कुछ फहमियों के ख्वाब में जन्नतों में पहुंची हुई थी। मैं यकीनन इन लोगों तक तो नहीं पहुंच सकती, मगर कम से कम इस काफले में कहीं पीछे ही खड़ी हो जाऊं तो इनका हिस्सा तो बन सकती हूं। मैंने दिल ही दिल में बहुत सारे इरादे बांध लिए थे कि अब के मैं वापस जाऊंगी तो मैं बदल जाऊंगी। कितना आसान था ना मेरे जमाने में खुद को थपकी देकर सुलाते रहना कि सब अच्छा है और मैं सबसे नेक हूं, क्योंकि हर तरफ फितना ही फितना था। तो जरा सा करके भी ऐसे लगता था बहुत कुछ कर लिया, और यहां आके पता चला कि वो तो कुछ भी ना था। मैं अपने जमाने में फूलों की सेज पे रहती थी, तब भी मैं दीन की खातिर कुछ करने को तैयार नहीं थी। मेरा हिसाब तो ज्यादा होगा क्योंकि मेरे पास नेमतें ज्यादा थी, मेरे जमाने में मेरे पास आसानी ज्यादा थी, सहूलत ज्यादा थी। कौन मुझे कोड़े मार रहा था? कौन मुझे तपती दोपहर में रेत पर लिटा रहा था? कौन लोहे की सलाखों से मेरे सर को दाग रहा था? मुझे अपनी दीन की खातिर कहाँ घर बार नौकरी सब छोड़ना पड़ रहा था? कौन मुझे धमकियां देता था? किसने मेरा जीना हराम किया था? ऐसा कुछ भी तो नहीं था। फिर भी मेरे पास अपने रब के लिए वक्त नहीं था। मैं रोई जा रही थी, मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या बहाना करूंगी, और मेरा सर घूम रहा था। मैं दीवार से टेक लगा के बैठ गई। इन फरिश्ता सिफ्त इंसानों की बातें मेरे कानों में पड़ रही थी, और मुझे लगता था ये दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग हैं। ये फकीर नहीं है, ये तो बादशाह है। फकीर तो मैं हूं जिसके पास कुछ भी नहीं, अपनी निजात का कोई सामान नहीं। मैं रोती जा रही थी और दिल ही दिल में अपने रब के हजूर माफियां मांगती जा रही थी। और शुक्र भी अदा कर रही थी कि वो रब मेरी आंखें ना खोलता तो मैं शायद इसी तरह जिंदगी गुजार के चली जाती। मेरे पास अभी भी मौका था, मैं अभी भी कुछ कर सकती थी। ना जाने कब वहां पे मेरी आंख लग गई। जब उठी तो सुबह हो चुकी थी। मैं चलते चलते काबा तक पहुंच गई। मक्का के हालात वैसे ही थे, उतने ही कशीदा, कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने देखा एक शख्स जो मुसाफिर लग रहा था, मस्जिद में पड़ा हुआ था। यूं लगता था कि सारे दिन से यहीं है, कुछ कहीं बाहर का लग रहा था और कुछ परेशान परेशान सा भी था। उसने उठ के जाके जमजम पिया और फिर आके अपनी जगह पे बैठ गया। ना किसी से कोई बात कर रहा था, ना कोई इसके पास आके पूछ रहा था। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। मैं उसको देखती रही, कोई ताजिर भी नहीं लगता कि तिजारत की घर से आया हो। रात छा रही थी और ये मस्जिद में एक तरफ लेटने की तैयारी कर रहा था। इतने में मैंने देखा कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर यहां से हुआ। उन्होंने भी शायद यही सोचा जैसे मैं सोच रही थी। वो जाके उससे पूछने लगे, तुम अजनबी मालूम होते हो? उसने कहा हाँ। फरमाया तो घर चलो मेरे साथ। उसने इस बात में सर हिलाया। अब अली आगे आगे थे और वो पीछे पीछे था। ना वो कुछ बोल रहा था, ना ये कुछ पूछ रहे थे। ये क्या अजीब बात है। उसने रात अली रजी अल्लाह ताला उन्हों के घर काटी। अगली सुबह मैंने फिर देखा वो मस्जिद में बैठा है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, ये मामला क्या है? लेकिन वो कुछ बोले, किसी से बात करे तो पता चले। आखिर फिर सारा दिन वैसे ही गुजर गया। शाम होने लगी तो अली दोबारा वहां से गुजरे। अब के उन्होंने फिर इससे पूछा। लगता है इस मुसाफिर को अपनी मंजिल नहीं मिली। वो बोला हाँ। अली ने फरमाया चलो फिर मेरे साथ घर। अजनबी ने अपना तोशादान उठाया और डंडा साथ लिया और इनके साथ चलने लगा। अब की बार तो अली रजी अल्लाह ताला ने पूछ ही लिया, तुम्हारा मामला क्या है, क्यों आए हो यहाँ? अजनबी ने बड़ी आहिस्तगी से कहा, अगर आप राजदारी से काम लें और वादा करें मेरे साथ कि मुझे सही बात बताएंगे तो आपको बताता हूँ। अली रजी अल्लाह ताला ने वादा किया। अजनबी बोला, मुझे पता चला है कि यहाँ एक आदमी आया नमूदार हुआ है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। मैंने कुछ अर्सा पहले अपने भाई को भेजा था कि वो मक्का जाकर उस आदमी के बारे में मालूमात लेकर आए, मगर वो कोई तसल्ली बख्श बात नहीं लेके आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद जाके पता करूं। अली ने ये बातें सुनी तो खुशी से उनका चेहरा दमकने लगा। फरमाया खुदा की कसम वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। फिर राजदाराना अंदाज में फरमाया, कल सुबह तुम मेरे पीछे पीछे चलते आना। अगर मैं रास्ते में किसी मकाम पर कोई खतरा महसूस करूंगा तो दीवार की तरफ इस तरह से हो जाऊंगा जैसे अपना जूता ठीक कर रहा हूं, लेकिन तुम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना। जब मैं किसी घर में दाखिल हो जाऊं तो तुम भी मेरे पीछे बेधड़क दाखिल हो जाना। मुझे आज इतनी खुशी हो रही थी ये सुन के। ये आदमी तो सुबह से यहां मस्जिद में बैठा हुआ था। यकीनन कुरैश के डर से इसने मस्जिद में किसी से कोई सवाल नहीं किया था। वो जरूर जानता होगा कि कुरैश मेरे नबी के दुश्मन है, इसी वजह से वो किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता था। मैं शिद्दत से सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही मैंने देखा मुंह अंधेरे अली रजी अल्लाह ताला नू अपने मकान से निकले और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो आदमी भी पीछे पीछे चल दिया। दोनों बड़े मोहतात अंदाज में चल रहे थे। ऐसे लगता था जैसे किसी खतरनाक मुहिम पे जा रहे हैं। आखिर अल्लाह की मदद थी कि दोनों बखैरियत मेरे नबी के पास पहुंच गए। अजनबी ने मेरे नबी को देखते ही कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने उसको जवाब दिया, ये मैंने पहली दफा सुना था कि किसी ने इस तरह से सलाम किया। इसीलिए इसके बाद से मेरे नबी के साथी भी आपको इसी तरह सलाम करने लगे। मेरे नबी ने उसको इस्लाम की दावत दी और वो तो जैसे पहले से तैयार था, उसने फौरन कबूल कर लिया। ये कितनी आसानी से ईमान ले आया। और कहाँ कई लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ साल हा साल से भी सर खपाते रहो तब भी वो नहीं मानते। ये वाकई नसीबे की बात है, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू जर, इस मामले को राज में रखना और अपने इलाके में वापस चले जाओ। मुझे डर है अगर किसी को पता चल गया तो वो आपको कत्ल ना करते। अबू जर ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मक्का से जाने से पहले मैं एक दफा तो जरूर कुरैश के सामने कलमाए हक बयान करूंगा। ये बात उन्होंने इस कदर जज्बाती अंदाज में कही कि मेरे नबी खामोश हो गए। अगले दिन मैंने देखा अबू जर मस्जिद में गए हैं और जहां कुरैश बैठे हुए बातें कर रहे थे उनके करीब जाके चुपके से खड़े हो गए। फिर अचानक से जोर से कहा, ए खानदाने कुरैश, मैं सिद्क के दिल से इकरार करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये कलिमात उनके मुंह से निकलने की देर थी तो वह वो लोग ऐसे भड़क उठे और खूनखार भेड़िए की तरह इनकी तरफ लपके, और फिर तो घूंसों की, लातों की, थप्पड़ों की ऐसी बारिश थी कि मैं घबरा गई। मैं चीख रही थी, बचाओ, कोई बचाए, देखो देखो आके, बचाओ इनको, ये तो मार देंगे इनको। वो लोग सारे के सारे मिलके एक शख्स पे पूरी कुव्वत से जोर आजमाई कर रहे थे और मुझे लगता था कि आज अबू जर नहीं बचेंगे। मुझे तो सिर्फ खून नजर आ रहा था और इनका जमगट्ठा था, ये इतने सारे और वो अकेले। उन्होंने इनको घेरा हुआ था और बस अंधाधुंध मार रहे थे, पूरा जोर लगा रहे थे। उनका बस नहीं चलता था कि उनके पास तलवारें हों तो इनका सारी उड़ा दें। हाँ, इनका कसूर क्या है? सिर्फ ये कि ये एक अल्लाह को मानने का इकरार कर रहे हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे, फिर ये कैसा जुल्म है? शुक्र है दूर से मुझे अब्बास रजी अल्लाह ताला नु आते हुए नजर आए, मेरी जान में जान आई। जल्दी आए, जल्दी आए, खुदा के लिए आके बचाएं। वो तेजी से आ रहे थे और उन्होंने आके इन आदमियों को पीछे किया और कहने लगे, अकल के अंधो, अपनी तबाही का सामान करना चाहते हो? तुम ऐसे आदमी को कत्ल करने पे तुल गए हो जो कबीला गफ्फार का है। पता है ना तुम्हें, इसकी बस्ती से तुम्हारे सारे तिजारती काफले गुजरते हैं। समझ जाओ फिर क्या होगा अगर तुमने इसके साथ कुछ कर दिया। ये सुन के वो लोग एकदम होश में आ गए, उन्होंने मारने से हाथ रोक दिए, वरना तो ये किसी के कहने पे रुकने वाले ना थे। और अबू जर की तो हालत ही गैर थी, वो तो तकरीबन बेहोश थे। यूं लगता था कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। पता नहीं ईमान का नशा भी क्या चीज होती है कि जब इंसान के अंदर सच्चा ईमान आता है तो उसका जी चाहता है सारी दुनिया को सुना दे, सारी दुनिया में ऐलान कर दे। चाहे नतीजा आगे कुछ भी निकले। कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको होश आने लगा। ये लोग यहां से चले गए। अब अबू जर खड़े हुए तो बमुश्किल खड़े हुए और गिरते पड़ते मेरे नबी की तरफ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो मेरे नबी इनकी यह हालत देख के बहुत गमगीन हुए। फरमाया, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अभी ना ऐलान करो? अबू जर तो दीवाने थे, बोले, आपने तो रोका था, मगर मेरी तो तमन्ना यही थी कि एक दफा जरूर मैं इस्लाम का ऐलान इन मुशरिकीन के सामने कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया, अब आप अपनी कौम की तरफ वापस चले जाएं और जो मुझसे सुना है वो उनको भी सुनाएं, उनको भी दावत दें, शायद इन आपके जरिए वो ईमान ले आए। और जो खैर आपको मिली है हो सकता है उन तक भी पहुंच जाए। और जब आपको ये खबर मिले कि मुझे अल्लाह ताला ने अपने फजल से गलबा दे दिया है, तो आप सीधे मेरे पास चले आइएगा। अबू ज़र ने आपकी बात सुनकर अपना सर झुका लिया और मैं सोच में पड़ गई, मेरे नबी का अल्लाह ताला पर भरोसा कितना ज्यादा था। हालात इतने खराब हैं मगर इनका यकीन मुतजलजल नहीं हुआ। इनको कितना यकीन है कि अल्लाह ताला जरूर गलबा देगा, वो जरूर मदद करेगा। वाकई इसी को तवक्कल कहते हैं। मुझे आज तवक्कल का माना समझ आ गया। मैं अपने अंदर झांक कर देखती रही कि क्या मैं भी सख्त हालात में अल्लाह ताला के ऊपर इसी तरह भरोसा करती हूं? क्या मैं भी इसी तरह हालात मुखालिफ सिमत में हूं तब भी ये यकीन रखती हूं कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी? मुझे अफसोस हुआ, मैं तो तवक्कल का माना भी ना समझ सकी। और मेरे नबी ने मुझे आज ये माना समझा दिया। वक्त मुकम्मल होता है, यहां तक हम आज का अपना एपिसोड खत्म करते हैं और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आप से है नबी जी, सल्ले अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लम।